अटैचमेंट कैसा चीज है इसके बारे में, आसक्तियाँ जो है सब इंद्रियों को कैसे बस में करना, कहाँ कहाँ लगाना, इसके विषय में इसको पढ़ने से हमको काफ़ी लाभबोध होता है। कैसे भौतिक से आसक्ति दूर होती जाए, आध्यात्मिक से में कैसे जुड़ जाए। महाराज प्राचीन वहित राजा पुरंजन का इतिहास इसमें है। पंचेन्द्रियार्थम् आरामम् द्वारः प्राणानवम् प्रभो तेजो अवन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रिय संगः। पंचेन्द्रियार्थ आराम द्वारः प्राणानव प्रभो तेजो अवन्नानि कोष्ठानि कूलमिन्द्रिय संग्रह। पंचेन्द्रियार्थ आराम द्वारः प्राणानव प्रभो तेजो अवन्नानि कोष्ठानि कूलमिन्द्रिय संग्रह। पंचेन्द्रियार्थ आराम द्वारः प्राणानव प्रभो तेजो अवन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रिय संग्रह। हरे कृष्ण। माताएं, शब्दार्थ पंच पांच इंद्रिय अर्थाह इंद्रिय विषय आरामाह उद्दान द्वारह दरवाजे प्राणाह इंद्रियों के छिद्र नव नौ प्रभो हे राजा तेज अप अग्नि तथा जल अन्नानी अन्नया पृथ्वी कुष्ठानि कोठे कमरे कुलम कुल परिवार इंद्रिय संग्रह पांचों इंद्रियां तथा मन अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे मित्र, पांच उद्यान पांच प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं और इसका रखवाला प्राण है जो नौ द्वारों से आता जाता है। तीन प्रकोष्ठ तीन प्रमुख अवयव अग्नि जल तथा पृथ्वी हैं। मन समेत पांचों इंद्रियों का समुच्चय इसके छह परिवार हैं। इस अनुवाद को मेरे पीछे प्रयास करें आप सब बोलने के। हे मित्र, पांच उद्यान पांच प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं और इसका रखवाला प्राण है जो नौ द्वारों से आता जाता है। तीन प्रकोष्ठ तीन प्रमुख अवयव अग्नि जल तथा पृथ्वी हैं। मन समेत पांचों इंद्रियों का समुच्चय इसके छह परिवार हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, दृष्टि स्वाद गंध शब्द तथा स्पर्श। ये नौ द्वारों से होकर कार्य करती हैं, जो इस प्रकार हैं: दो आँखें, दो कान, एक मुंह, दो नथुने, एक जननेन्द्रिय तथा एक गुदा। ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजों के तुल्य हैं। प्रमुख अवयव हैं पृथ्वी जल तथा अग्नि और मुख्य कर्ता है मन जो बुद्धि द्वारा अनुशासित है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति शुभदन्दिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तमसजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखानिमितं च। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदीशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतौ राधा कांत नमो अस्तुते। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपसरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। दिव्यरण्यकल्पद्रुमादः श्रीमदरत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिवीशेभ्यमानस्मरारम् श्रीमान रासरसारं वी वंशीवटतट स्थितः कर्षण वेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुवयस्य कृपा सिन्धुयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की। तो इस अध्याय में हम लोग को यह शिक्षा में रहा है, जो आसक्तियां है, हमारा लगाव किधर होना चाहिए किधर नहीं होना चाहिए, इसमें सीखने की बहुत उत्तम विचार करके उसको सोच समझ के आगे बढ़ सकते हैं, अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं भक्ति मार्ग में। तो यहाँ पुरंजन जो है राजा प्राचन रहित, तो मन जो है राजा है पुरंजन। मन जैसा कि बहुत लोग को जैसा बोला जाता है कभी कभी, भाई आपके शत्रु हैं कि नहीं, तो बोलते हैं हमारा शत्रु नहीं है। नहीं, शत्रु है सबका, शत्रु साथ में हमेशा है, वो है मन। मन शत्रु है, तो मन को जीत कर मित्र हम बना लेते हैं शत्रु के जगह, तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं महाराज राज रोषित पुरंजन को, तो यहाँ जो है इतना आसक्ति, पिछले अध्याय में पिछले श्लोकों में बताया गया है, अपने परिवार खास करके धर्म पत्नी के प्रति इतने आसक्ति था, उस आसक्ति अंतिम समय तक, मरते समय खास करके प्राण जो श्वास के अंत समय भी कैसा होगा कैसा होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा, तो इसका नतीजा क्या हुआ, इतने आसक्ति होने से क्या हुआ, उसको जो है स्त्री योनि माना पड़ा महाराज पुरंजन को, स्त्री योनि में। तो जैसे ऐसा हम विचार आता है हमारा मृत्यु के समय, उसी प्रकार हमको शरीर प्राप्त होता है। कोई सोचे अपने पितृलोक को, मेरे पितृलोक आजा दादा परदादा ये लोग के बारे में सोचता रहे याद मृत्यु के समय, तो पितृलोक में जाना होगा। ब्रह्मा जी का कोई याद करे ब्रह्मलोक में जाएंगे। पिशाच भूत पिशाच जैसे जादू टूना तांत्रिक में मन लगा रहे हमेशा, तो उसमें मन जाएगा तो पिशाच योनि में जाएंगे, भूत प्रेत योनि तांत्रिक वाले योनि। और जब भौतिक इच्छा में अभी भी तृप्ति नहीं है और सुख भोगना चाहते हैं, तो महादेव की सेवा करके इंद्र के बारे में सोचें तो इंद्रलोक में जाएंगे, जो वहाँ भी टेम्परेरी है, यहाँ से हजारों गुना फैसिलिटी ज़्यादा है, लेकिन वो भी टेम्परेरी है, पुण्य खत्म होने के बाद फिर आना ही पड़ता है। और थोड़ा अच्छा पुण्य करें तो और आगे जाएंगे, ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, चंद्रलोक में उच्च कोटि के देवता रहते हैं, लेकिन वहां मिस्टेक हुआ तो फिर सब धड़ यहीं गिरते। तो महाराज इतने आसक्ति रहा पुरंजन को था अपने पत्नी के विषय में कि मेरा पत्नी का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा। तो यहाँ यह शिक्षा मिल रहा है कि वो राजा पुरंजन को स्त्री योनि में आना पड़ा, स्त्री योनि राजा पुरंजन को, इसमें ये सब बताया हुआ है। तो खास करके आज ये श्लोक जो है बोले हे मित्र है? ये पांच बगीचे हैं, उद्यान मतलब बगीचा, इस पांच बगीचा में केवल भोग विलास आनंद के लिए, जैसे कि देखो शाम को आज बहुत भीड़ होगा जी, आते हैं वहाँ से चौपाटी जुहू बीच, वहाँ से माना जाता है ना बस स्टेशन आगे दूर जाने से है जो मुड़ाव है जुहू चौपाटी, तो वहाँ से घुसते हैं लोग घूमते घूमते समुद्र किनारे होकर यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ आते हैं मंदिर में आते हैं, लेकिन मंदिर आकर के भी यहाँ तक नहीं आ पाते, आलू बड़ा समोसा वगैरह खा के वापस चले जाते हैं। बहुत लोग 50% लोग ऐसा अभी मालूम नहीं कैसे अभी है? कुछ लोग कहते हैं महाराज हम समोसा ही खाने जाते तो ये इंद्रिय सुख के लोभाव, लेकिन थोड़ा मन इधर भी आध्यात्मिक लगा, चलो भाई थोड़ा भगवान का दर्शन करें, चरणामित ले लें, वो तो और उत्तम प्रसाद है, तो धन्य धन्य होगी तो बुद्धि। तो यहाँ आ करके भी नहीं जाते, जैसा कि उदाहरण है शास्त्रों में, जगन्नाथपुरी में कुम्हार था, नदी किनारे से मट्टी निकालता था, बालू मिला करके मेता था और बर्तन बनाता था, जो भगवान का भोग लगता है 56 भोग आवड़ा, और हर दिन सुबह बर्तन बना के उसको जला के पका के शाम को ला के सिंह द्वार में, पूर्व दिशा के द्वार को सिंह द्वार बोलते हैं, चार द्वार जगन्नाथपुरी, वहाँ छोड़ के चला जाता दे कर। 120 साल वो जिंदा रहा लेकिन अंदर कभी दर्शन के लिए नहीं गया। देखो काम भगवान के लिए कर रहा है लेकिन अंदर दर्शन करने कभी नहीं गया है? तो जीवन भर तो इसी प्रकार हम देखते हैं राजा पुरंजन को, जो अंतिम समय तक इतना दिन साथ रहे बैठे, सब इतने परिवार बढ़ा, लेकिन फिर भी मरते समय इनका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो उसका नतीजा क्या होता है, स्त्रियों ने, और वो भी स्त्री योनि में आकर के कहा आते हैं विदर्भ, विदर्भ देश में, जो कि हमारे रायपुर से नजदीक पड़ता है, केवल 5 घंटे का रास्ता है ट्रेन में, अमरावती उसके बगल में है, जो कि रुक्मिणी का है विदर्भ, ठीक है ना, विदर्भ देश बोलते हैं ना उसी को। तो हाँ महाराज विदर्भ के पुत्री के रूप में आते हैं, स्त्री योनि में, और यहाँ तो प्रभुपाद का बहुत संक्षिप्त में है जी, केवल 4 लाइन है तात्पर्य, तो उसे मैं आगे पीछे से उसके लिए चल रहा हूँ। तो वहाँ करके जो है बहुत सुंदर कमल नयनी, लोटस कमल के बराबर आँख, नीला कलर, लेकिन उन्होंने आसक्तियाँ बहुत था रंजन का पत्नी की पत्री प्रति, लेकिन पुण्य काम भी बहुत किया था। तो यहाँ हम देखते हैं पुण्य काम करने के फल से उसको अच्छा परिवार में जन्म मिला, स्त्री योनि में आने पर भी अच्छा परिवार में जन्म मिला और परफेक्ट सब भक्ति में बहुत, और उनको आगे चल के पति भी अच्छा मिले, मलय ध्वज राजा बहुत पहुंचे हुए भक्त और बहुत शक्तिशाली राजा, देखो भगवान की व्यवस्था देखो। तो कहने का तात्पर्य कोई भक्ति मार्ग में मन विचलित करके इधर उधर होकर के बिछड़ भी जाता है लेकिन भक्ति नहीं छोड़ता तो चांस भगवान देते, यहां महाराज पुरंजन को चांस दिया गया, क्योंकि अच्छे पुण्य कर्म किए थे तो अच्छा राज परिवार में जन्म लिए, स्त्रियों में आए, तो अटैचमेंट के बारे में यहाँ बताया है, आसक्तियाँ जो है। और देखते हैं हम आज जैसे कि भारतवर्ष जिसके नाम से पढ़ा है, जड़ भरत महाराज, उनका आसक्ति राज पर सब छोड़ दिए, बच्चे को सौंप दिए, राजा बना दिए, राजकुमार को है, और नदी किनारे चले गए और नदी किनारे तपस्या में हैं, ध्यान में हैं, भजन कर रहे हैं। एक बार एक हिरणी, गर्भवती हिरणी पानी पीने आई नदी में, अब वो पानी पी ली, अब पानी पीने के बाद तृप्ति हो गया तो लोग ढकारते भी हैं, फुर्तीला आ जाती, तो सिर उठा करके ऐसा देखा, फिर जाने का रास्ता पीछे तरफ, तो उसका पीछा जो है शेर, सिंह पीछा कर रहा, तो देखिए तो जाने का रास्ता तो बंद, दरवाजा बंद, पकड़ेगा उस, तो भय से नदी पार करके वो आगे निकल जाती है और डर से इतने तेज से भागी, उस बचने के लिए अपने जीवन रक्षा के लिए, गर्भपात हो जाता है, डिलीवरी हो गया, बच्चा गिर आ गया, और पता नहीं उसको बच्चा डिलीवरी हो गिर गया, ये सब महाराज जड़ भरत देख रहे, आगे जाके ठक्कर के पत्थर में ठोस मैंने पैर में लग गया तो गिर जाती है, आप प्राण त्याग, ये सब देख रहे हैं महाराज जड़ भरत कि क्या हो रहा है, है? राजसी भरत, जड़ भरत नाम पड़ा बाद में, तो राजसी भरत, तो ये तो बड़ा अन्याय होगा, मैं भक्ति करने आया हूं लेकिन एक शरीर अंत हो गया, एक अभी नवजात शिशु आया है, हैं? तो बहुत तकलीफ, तो फिर उनको रहा नहीं गया, जाते हैं नदी पार करके उसको उठा करके, ऐसा होता है जी, मैं भी अपने जीवन में 2-3 बार मुझे ऐसा, हमारे जो गाय हैं खेत में कहीं बाहर पैदा हो गया बच्चा तो पता चला कि गाय, तो जाके लेके आते थे उठा के। तो जड़ भरत महाराज राजसी महाराज लेके आए, उसको साफ सफाई किए, धोए, अपने आश्रम में रखे, जो और जहाँ त्यागे हैं अपना शहर को, फिर वहाँ जाना पड़ा उसके लिए दूध लेने के लिए। लेकिन अपने ये आसक्ति के बारे में उदाहरण में दे रहा हूँ, तो धीरे 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 करके इतना उनको आसक्ति बढ़ गई हिरण के प्रति, भजन में कम हो गया, भजन उनका कम हो गया, आसक्ति बढ़ गई। एक बार कुछ दिन के लिए हिरण चले गया था जंगल में, थोड़ा बड़ा हो गया था, उछलते उछलते, तो मेरा हिरण का क्या होगा, क्या होगा, खाना पीना नहीं, भजन नहीं, फिर उसके बारे में चिंतन। अब अंतिम में मरते समय भी, तो हम जैसे जैसे मरने के समय स्मरण करेंगे, चिंता करेंगे, तो उसी प्रकार शरीर प्राप्त होता है, भगवान भी कहते हैं। तो इस अंतिम समय में तो इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है, खैर मुझे श्लोक थोड़ा याद नहीं आ रहा है। महाराज कुलशेखर, महाराज कुलशेखर को भगवान कहते हैं कि अंतिम में मुझे याद करेगा जो मेरे पास आता है। तो कुलशेखर बताते हैं कि हे भगवान, आप जो बोलते हैं अंतिम समय में मुझे याद करो तो मेरे पास आओगे, तो हम कैसे अंतिम में आपके नाम हम ले सकते हैं, आपको कैसे याद कर। बोला कैसे नहीं, बोला क्यों नहीं ले सकते हो, आपको खाली याद हो गई, याद मुझे पूरा जरा नहीं है, है? या प्राण प्राण समय कप बात पीतो कम कंठावर उधकम, ये श्लोक है, है? तो इसमें पैर के अंगूठा से बर्फ के बराबर एकदम फ्रीजर ठंडा होते होते गले में कफ बात पीत तीनों एकत्र जब हो जाता है, तो इसी समय में हम कैसे नाम ले सकते हैं प्रभु। तो भगवान कहते थे अभी से प्रयास करो, अभ्यास करो, अभ्यास योग है ना, अभ्यास बहुत जरूरी है। अभी से हम लेते रहेंगे तो अंतिम में जरूर आएगा, भगवान सहायता करेंगे। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि हम आगे चले सब चतुर्थ अवस्था में लें, नहीं, जब हमें ध्यान आया उसी समय तुरंत हाजिर हो जाना चाहिए भगवान की सेवा में। ये कलयुग बहुत खतरनाक है, तो यहाँ ये इतिहास हम देखते हैं, नहीं तो ये आसक्तियाँ जो है इधर उधर मन को बहका ले जाता है। जैसे ये उदाहरण हम बताया, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं किसी चीज़ में डिस्टर्ब नहीं होते, चाहे कैसे भी अवस्था हो भगवान को भूलते नहीं। यहाँ पर पांचवा मंजिला में 1977 में प्रभुपाद ट्रांसलेशन जब करते थे, देखो शुद्ध भक्त का, अतमाल कृष्ण महाराज उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी, वो कृष्ण वो किया चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे। अब मैं जो है ऐसा ही रामनवमी के बाद मोगरा फूल के माला दो समय दो बार चेंज होता था, 3:30 बजे भी ड्यूटी जगाने का माला, तो वो माला लेके पहनाने जाता था। इधर मार्बल है, मार्बल का नहीं, बोला अलग है। तो वो जब जाता था तो उसके पहले का स्टोरी है, थोड़ा मेरा ये मिस्टेक हो जा रहा था। तो प्रभुपाद एक बार जब यहाँ ऊपर में थे, तकलीफ उनको शारीरिक कष्ट हुआ, ये स्टोरी आगे पहले बात का बोल दिया पहले, तो यहाँ मार्बल काम करने वाले हम 150 लोग थे राजस्थानी, सब मुस्लिम कारीगर, टुक 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 नकाशी का काम कर इधर ऊपर, तो आवाज प्रभुपाद का दरवाजा खिड़की खुला था, सुनते थे। तो तमाल के महाराज ने कहा सिक्योरिटी बंद करो, ये आवाज़ प्रभुपाद को डिस्टर्ब हो रहा है, ट्रांसलेशन करने में अनुवाद करने में डिस्टर्ब हो रहा है, बंद करो। तो उस समय मैं भी पहुंचा था, तो महाराज तमाल आई एम नॉट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब दिस वर्क राधा रास वेरी, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज प्रेयर करताल, जो बोलते हैं जो हथौड़ी ठुक 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 कर रहा है, दिस इज करताल प्लेयर प्रभुपाद है। देखो भक्त का विचार है, बोला मुझे कोई बाधा नहीं हो रहा है ट्रांसलेशन करने में है, लेकिन देखो आसक्ति भगवान के प्रति भी राधा रास प्यारी के काम चल रहा है, अब अनुवाद भी मैं कर रहा हूँ, भगवान का ही गुणगान कर रहा हूँ आगे प्रचार के लिए। तो भक्त कहाँ तक सोचता है। लेकिन जो पूर्ण रूप में शुद्ध भक्त नहीं है, तो यहाँ हम देखते हैं इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा भक्त होकर के परिवार के बारे में कैसा सोचते हैं, है? लेकिन परिवार के बारे में जो शुद्ध भक्त होता है कभी नहीं सोचता। इसका उदाहरण प्रभुपाद भी हैं। जब संन्यास कोई लेता है ना, अपने बच्चों का पूरा पैर में खड़े हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, तब लेते। लेकिन प्रभुपाद ने वो भी वेटिंग नहीं किया। शुद्ध भक्त प्रभुपाद इसका भी इंतजार नहीं की। अब लीलामृत पढ़ लो, देखोगे। तो ये इस शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो हम एक शुद्ध भक्त के संग में उनके अनुयायी हैं, हम लोग हैं सब। आप लोग प्रभुपाद के बहुत सारे ग्रैंड डिसाइपल लोग हो, हैं? तो हम प्रभुपाद का पुस्तक पढ़े, जैसे हर दिन भागवत श्रीमद भागवतम अमलम पुराणम नष्ट प्रायशु अवद्वेशु नित्यम भागवत सेवया, ये सब हम जो ये भागवत हर दिन पढ़ रहे हैं, जो हमारे अवगुण हैं आप ही आप नष्ट होते हैं जी। अच्छी चीज सुनने से उस मन उसमें से जो भौतिक चीज़ों से भग जाता है, दूर हट जाता है, और भौतिक में आसक्ति होती है तो ये कब ये भी कम पड़ जाता है, दोनों बात है। तो इसको भक्तों को ध्यान रहे हर दिन, ये कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, कंट्रोल कैसा कर सकते हैं। जैसा पांच ही बगीचा बताया है उद्यान, इसमें जो है भोग विलास का ये अलग अलग सब जो ये पार्ट बताया है, तो इसका कंट्रोल केवल मन करता है। तो इसीलिए मन को एकाग्र करने के लिए बहुत सारे भक्तों लोग का उपदेश है, उसमें हम चलें तो हम अपने आप को हम सुधार सकते हैं। मानस देह गेह जो किछु मरा और पिलू तो या पदे नंद किछु, हे नंद कुमार मैं अपना मन, सबसे पहला मन, मन दे दिए मतलब सब दे दिए जी। मन यहाँ हम लगा देते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ, तो ये मन जो है एकाग्र करता है जी। मन नहीं है, हम बड़े सुंदर कथा भी वाच कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं है, नजर कहीं है, मुख बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, तो ये भी ठीक नहीं। तो यहाँ मन को एक अच्छी, यहाँ स्त्री के प्रति कितना आसक्ति लगा दिए हैं, तो उसका ये नतीजा यहाँ हम देख रहे हैं, हैं? इंद्रिय सुख के विषय ये सब में लगाए हैं उन्होंने। तो इसका रखवाला कैसे हो सकता है? रखवाला कौन है? प्राण। प्राण जब तक जीव आत्मा रहता है जी, ये सब भोग सुख का, ये सब इंद्रियों का संचालन करता रहता है। जीवात्मा जब तक रहता है संचालन करता रहता है। आई नौ द्वार में जो आते जाते हैं, इस शरीर जो है नौ द्वार है, नौ द्वार का ही घर है, इसमें आना जाना चलता रहता है हमेशा। तो इसमें बताएं तीन प्रकोष्ठ, तीन प्रमुख अवयव हैं, अग्नि जल तथा पृथ्वी, और मन समेत पांचों इंद्रियां का समुच्चय, इसके छह परिवार, छह परिवार बताया। यहाँ शिल प्रभुपाद बता रहे हैं पांच ज्ञानेन्द्रियाँ बताए हैं। पहला पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, दृष्टि स्वाद गंध शब्द तथा स्पर्श। तो ये जो है ये नौ द्वारों से होकर कार्य करती हैं, उसमें ये कार्य करते हैं अपना, जो उसको जो इच्छा जरूरत है इसमें अपना पूर्ति करते हैं नौ द्वारों से, जो इस प्रकार है। इसका विवरण यहाँ प्रभुपाद बताते हैं बहुत संक्षिप्त में। दो आँखें हैं, पहला मन तो ये आँख को ही दौड़ाता है जी, कहीं भी हम कोई चीज़ को हासिल करना चाहते हैं आँख, जैसे अभी भागवत भी हम वाच कर रहे हैं, तो आँख मन जो है आँख को यहाँ भेज रहा है। हम जब देखेंगे तो बोल सकते हैं, या पढ़े हैं तो बोल सकते हैं, नहीं पढ़े तो देख करके बोल सकते हैं, या ज्ञान यहाँ है पढ़ करके, आँख के द्वारा देख करके हम यहाँ अर्जित किए हैं पोस्टा में, यहाँ भरा व्यवस्थापक है। तो यहाँ आँखें, दो कान और एक मुंह, दो नथुने, एक जननेन्द्रिय तथा एक उदर, ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजों के तुल्य, ये सब जो है ये घर के अलग अलग रूम का दरवाजा के बराबर सब हैं। तो ये जीवात्मा इसमें जो है क्या करता है, यहाँ सारांश प्रभुपाद बता रहे हैं, ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजे के तुल्य हैं, जो प्रमुख अवयव यह है पृथ्वी तथा अग्नि, और मुख्य कर्ता है मन जो बुद्धि द्वारा अनुशासित, बुद्धि के द्वारा मनुशासित। तो ये बुद्धिमान के हैं, कौन है, देवभक्त है जी, सबको कंट्रोल करने के लिए, अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए हम इस संस्था में जुड़े हुए हैं। हम कंट्रोल कर सकते हैं गुरु कृष्ण के कृपा से, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, और नहीं हम वश में नहीं कर सकते तो फिर पिछड़े। जैसे हम पुरंजन के बराबर, उसको पूरा करने के लिए फिर ऐसा योनि में आना पड़ेगा जी, लेकिन वो तो बहुत पहुँचे हुए भगत थे, बहुत पुण्य काम किए थे, तो उनको स्त्री योनि में आने पर भी अच्छे परिवार में जन्म मिला, लेकिन हमें क्या भरोसा। तो यहाँ हमें इसको पढ़ करके सुन करके ये हम समझ आ सकते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं कि भाई नहीं, हमको क्या करना है। तो ये सबसे पहले इसमें होता है, हमारा आहार से सब चीज़ बनता है। जैसा हमारा आहार होता है, जैसे हम भोजन खाते हैं, उसमें से बनता है, आगे सब बताया है। भोजन खाने के बाद क्या क्या होता है, रक्त में मांस में कौन जाता है, मल में कोई चीज़ जाता है, आगे का बोलना पहला ये उचित नहीं, ये मना है प्रभुपाद के समय से। तो ये शिक्षा सब मिल सकता है मिलता है भक्तों को। उसीलिए हम सब देखो एकत्रित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं बड़े अच्छे से, चुपचाप, कोई चीज का आवाज नहीं, बड़े से सुन रहे हैं, यही है मुख्य। तो इसी प्रकार हम लगे रहे, हमारा मन भगवान की सेवा, भगवान के गुणगान, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक, प्रेम श्रद्धा के साथ, ड्यूटी बजाने के लिए नहीं। हाँ चलो भाई हम आश्रम में रहेंगे, अगर मंगल आरती नहीं आए, क्लास में नहीं बैठेंगे, एक दिन दो दिन तो बोलेंगे, चौथा दिन बोलेंगे तुमको प्रसाद नहीं मिलेगा। अरे प्रभुपाद ने रूल बनाया है बम्बई के लिए, पहले हम लोग के समय जब उन्होंने जो मंगल आरती नहीं आते थे उसको प्रसाद नहीं, अब पुजारी को बोल देते थे कि महाप्रसाद के लिए भी आएगा, देना नहीं, शाम को ही मिलेगा उसको, अब सेवा सब करना पड़ेगा। अब हिमा प्रभु को हरिदास दो पुराने हैं अभी हाल, गोपाल कृष्ण महाराज हैं, ऐसे 5-7 आदमी हैं, जनार्दन जी हैं, ये सब आप इनको पूछ सकते हैं। तो ये रूल है, शासन थोड़ा होने से, जैसा कि इस कभी कभी डॉक्टर जो है घाव ठीक नहीं होता है तो उसको काट के निकालता है, ऑपरेशन करके निकालता है, जो बुद्धिमान नहीं है तो बोलता है अरे कैसे आदमी है यार, वो देखो उसका पैर को काट रहा है लड़का को, छोटा सा लड़का को पैर को चाकू से काट रहा है, लेकिन उसका बुद्धि उतना नहीं। लेकिन डॉक्टर जो है उसको ठीक करने के लिए कहता है, इसको जड़ से निकाल दूं साफ हो जाएगा, बहुत दवाई दारू किया है। तो जड़ से निकालने के लिए यही है भक्ति मार्ग है, हमेशा भगवान की सेवा के लिए ही हमारा शरीर उपयोग हो रहा है। तो निश्चित है हम जो है भले ही भगवत धाम नहीं जाएं, लेकिन ऐसे अच्छे परिवार में जन्म लें ताकि शुरू से हम भक्ति कर सकें। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे, इन्होंने अपने इसे पिछले जन्म में भक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ तो भगवत धाम नहीं गए, तो ऐसे घर में जन्म दिया, एक पंत दो काज, बड़े प्रचंड बहुत शक्तिशाली असुर हैं, वो भी भगवान का वरदान है, असुरों को भी वो भी भगवान को मिला था, भक्त को भी, दोनों काम करते हैं भगवान एक साथ। एक सुरी भक्त को तो वह भक्त तो ठीक है, हैं जो असुरी वृत्ति को पहला निपटा देते हैं भगवान। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था एक ऐसी है, यहाँ के मतलब प्रभुपाद तो बहुत संक्षिप्त में है जी, तो उससे बढ़ा चढ़ा के हम कैसे बोल सकते हैं। तो हम अलग अलग से उदाहरण थोड़ा ले रहे हैं उसी लिए। तो संत महात्मा जो होते हैं मेरे प्रभु लोग माता पिताएं, संत महात्मा जो है दूसरे का दुख लेते हैं। अभी मुझे कथा याद आ रहा है, अभी वो महाराज नहीं रहे, उनका प्रवचन में सुना था, महाविष्णु महाराज एक कथा में बता रहे थे, मीरा रोड में के पास भागवत सप्ताह हो रहा था उनका। तो इस संसारी अटैचमेंट जो भौतिक आसक्तियां है ना, भौतिक संपत्ति से हम खुशी रहेंगे, धन दौलत इसमें जो, इसके बारे में उदाहरण देके बहुत सुंदर बताया, केवल सुन करके मन में बैठ गए, वो अभी याद आ गया बता रहा हूं। एक बार राजा ने दिवाली के समय स्वर्णकार को अपने घर में बुलाया, मंत्री के द्वारा, मंत्री को बोला सुनार को, अच्छा सुनार जो है उसको बुलाओ, माने रानी का सब जीवर जो है साफ सफाई करवाएंगे, मैला हो गया है। तो सुनार को जब बुलाया गया, राजा बुलाने से तुरंत तो आया जी, और सब हार को, बहुत कीमती कीमती हार सबको आग में जला करके एसिड में डाल करके रीठा पानी से उसको ब्रश के द्वारा, पीतल का तार का ब्रश होता है उसमें साफ, और फिर पोंछ करके कपड़ा में, फिर धूप में सुखाया जाता है ताकि पानी का दाग नहीं रहे। पानी का दाग रहेगा ये सब गाड़ी साफ करोगे काश है, खाली पानी मार दोगे दाग दाग देखेगा, अगर कपड़ा में सूखा पोंछ देते हो तो ठीक है, जाओ निकाल दे, बराबर है। उसी प्रकार ये चीज़ें भी ऐसी है गहने गुटे, तो धूप में वो सुखाया था स्वर्णकार ने। एक बाज उड़ के आया, बाज पक्षी उड़ के आया, देखा कुछ खाने का चीज है, चमक रहा था जी कीमती हीरा मोती नीला डायमंड का हार, तो अपने पैर में से उठा करके ले गया, भागा, हार ले गया। सुनार बोलते, सुनार वहां सिपाही लोग थे, लेके ले, चोरी हो, ऐसे हल ना होने लगा। राजा ने घोषणा करवाया मंत्री से कि भाई बहुत कीमती कई करोड़ों का हार है, अब घोषणा करो राज्य में हमारे कि इसको हार को जिसको मिलेगा ले आएगा तो उसको हम 10 लाख रुपया इनाम देंगे या 2 गांव इनाम दे देंगे, गांव का मालिक जो जो भी मिलेगा लाओ। तो इस अच्छे बुरे मैंने संत भी सुने थे बात को, धनी लोग भी गरीब भी सब सुने हैं जी। रात बीत गया, दूसरे दिन सवेरे एक गरीब लड़का व्यक्ति, बहुत गरीबी, बाहर मैदान में, अटैच बाथरूम नहीं जी, गरीब आदमी है, बाहर मैदान में गए, जैसे कि अपना गेस्ट हाउस के पीछे रोड है, उसके बाद टाटा, क्या है टाटा का है शोरूम, क्या बिल्डिंग, उसके बगल में नाला है जी, गटर सब बम्बई का नरक पानी के बहरा है। तो ऐसे किनारे में एक मल छोड़ने गया त्यागने के लिए, लोटा नहीं पानी, तो हाथ धोने के लिए, मल साफ करने के लिए गंदा पानी में गया, और सूर्य उग चुका था 8-9 बजे के समय, तो हार जो बाज पक्षी लेके झाड़ में बैठा था, झाड़ में डगाली में फंस गया, हार वहीं पर है, और सूर्य ऊपर चढ़ चुका है, और वो पानी तो गंदगी है लेकिन जब बहते बहते गंदगी जम जाता है तो पानी साफ भी दिख रहा है, और वो मल स्विच करते समय वो देखा थे, अरे ये हार तो कल राजा ने घोषणा कराया तो हार यहां पर है। फिर उसने जो है अपना टी शर्ट वगैरह उतार के अंडरवेल को ही पहना और जाके उसको पकड़ रहा है छांव को, परिछाई को, यहां देखो महाराज बड़ा सुंदर से बताया, परिछाई को पकड़ रहा है। वो कैसा पकड़े, तो एक संत जो है वो भी गया था शौचालय, तो इतना गंदगी पानी में व्यक्ति क्यों बार बार डुबकी लगा रहा है, तो संत को सहन नहीं हुआ, उसके नजदीक आया जी, नजदीक आया, बोलता है हे भैया क्यों ये गंदे पानी में बार बार डुबकी लगा रहे हो, क्या गिर गया आपका? अरे भाई तेरे क्या गिर गया नहीं गिर गया, तुझे क्या इंक्वायरी करना है यार, तू जाना अपने काम कर है, आप तो साधु संत हो जाओ, ये तो मेरा काम। अरे भैया मैं सहायता कर, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तुम जाओ, धमकी दे, बेचारा चले गया। फिर भी कुछ दूर जाने के बाद रहा नहीं जाता है, फिर भी ऐसे पलट पलट के देखता है, और ये भी देख रहा है, तो साधु चला गया, फिर वहां डुबकी लगा रहा है, संत को रहा नहीं जाता है, फिर दोबारा आया, बोलता है भाई साहब मुझे विश्वास करो, ये सब संसारी चीज को छोड़ करके मैं भगवान के सेवा में आ गया हूं, मैं तो आपको सहायता करूंगा, मैं आपका कोई चीज हासिल नहीं करूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मैं आपको मैं सहायता करना चाहता हूं, बताइए क्यों बार बार इतने गंदे पानी में डुबकी लगा रहे हो, क्या क्या खो डाले, सच बोल रहे हो? हाँ मैं सच बोल रहा हूं, संत बोलता है। तो कल घोषणा हुआ ना राजा साहब का हार चोरी हो गया है, तो चोर ने देखो फेंक दिया है, वो वहां हार तैर रहा है, उसको पकड़ रहा हूं, पकड़ा नहीं जा रहा है। अच्छा, ऊपर देखा तो वो झूल रहा है जी, हार, वो हार ऊपर झूल रहा है। अरे भैया, अरे यार कितनों परिश्रम, ये हार का छाव है, वो हार उधर चिपका है। झाड़ चढ़ने आता है कभी? झाड़ू चढ़े हो आम उम तोड़ने के लिए? जामुन आम तोड़ने के लिए झाड़ू चढ़ने आता है क्या? बोला हाँ आता है। हो वो देख, वो दौड़ के चढ़ गया, उसको पकड़ा लिया। तो देखो संत, और इसका उदाहरण ये देते थे, तो जो संत जो भगवान के भक्त नहीं है, खाली धनम देही जन्म देही में केवल जीवन नष्ट कर रहे हैं महाराज पुरंजन के बराबर, अब मरने के समय भी बार बार याद आ रहा है क्या होगा। अगर उस समय भगवान को याद आता तो धन्य धन्य हो जाता जी। भगवान को याद नहीं आने के कारण क्या हो रहा है यहाँ फिर आकर के? तो यहाँ ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये जीवात्मा जो है ये शरीर को भोग लगने के लिए बंदी बनाया हुआ है, बंदी प्राण। जब तक जीवात्मा रहता है बंदी के रूप में, आगे आपको सब मिलेगा है। तो हमको इसमें शिक्षा मिलता है कि जो भगवान से संबंधित जो चीजें नहीं है जी, वो सब परीक्षाएं हैं, सपने के बराबर है। सपने में हम बहुत सारे चीज देखते हैं, रात को जग जाने के बाद कुछ नहीं, खाट में ही है। तो उसी प्रकार ही भौतिक सुविधा, अच्छे मकान, घर द्वार, गाड़ी, परिवार, अगर भगवान से संबंधित नहीं है, वो लोग जुड़े नहीं है, तो वो लोग दूर करना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए, जैसे हमारे गुरु महाराज ने किया। गुरु महाराज ने देखी कि भक्ति में बाधक हो रही है, तो हमारे गुरु माता को उन्होंने बोला नहीं, यू लाइक टी यू लाइक मी, चाय नहीं छोड़ते थे। तुम्हें चाय पसंद है या मुझे? चुप, बोलो बोलो, निर्णय लेना है आज, तुम्हारा हमारा फैसला है निर्णय। तो बोला तीसरा बार जब बोले, बोलते हैं मैं चाय नहीं छोड़ू, ठीक कोई बात। फिर प्रभुपाद ने तैयारी की अपना सुबहकर सिंह की, तो एक हम शुद्ध परमहंस परिवराजा का आचार्य है, पवित्र आत्मा साधारण नहीं, उनके साथ हम हैं। आप लोग को कभी ये नहीं सोचना है, अभी के जो नौजवान भक्त ब्रह्मचारी गृहस्थ जो भी सब बैठे हैं, मेरा आप लोगों से यही विनती है, केवल प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ो जी, सब ज्ञान भंडार पड़ा हो, बाहरी पुस्तक नहीं। अब इस काल में जुड़े हो तो प्रभुपाद का ही पुस्तक जोड़ो, बाहरी पढ़ोगे तो फिर ऐसा मन भटकेगा पुरंजन के बराबर। बहुत सारी आसक्तियां, बहुत सारे और है, चार संप्रदाय से, चार संप्रदाय से अलावा और बहुत सारे है, लेकिन वो लोग ये सब कुछ मना नहीं करते। क्षमा चाहता हूं, मैं नाम नहीं लेता हूं, बहुत से लोग हैं। बोला भक्ति भी करते रहो, ये सब भोग विलास भी करते रहो, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। दो नाव से पर रखोगे, दो नाव में नया नदी नहीं पार, एक ही से एक रास्ता। तो हम भक्ति मार्ग अपनाए हैं, इसमें ये भी नहीं सोचना है हम कौन से आश्रम है, जो आश्रम है वो ठीक है, उसी में रह करके हम भगवत भक्ति में आगे निकल सकते, नहीं तो कष्ट है। और एक बहुत अच्छा स्टोरी बता रहा हूं आसक्तियां के बारे में, ऐसा जैसे मैं अभी आप लोग श्रोता के रूप में बैठे हैं, मैं वक्ता के रूप में बैठा हूं, आप लोग मुझे यहां बोले प्रभु जी आप बैठो महाराज। एक बहुत अच्छा ब्राह्मण, चार वर्ण में पहला ब्राह्मण आते हैं, ये ब्राह्मण जो है अच्छा, बहुत कोसे का कपड़ा अच्छा कड़क प्रेस किया हुआ अच्छा से पहना हुआ है, अब कथा वाच कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, मटक रहा है आंख इधर उधर देख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बोल भी रहा है भागवत, लेकिन मन और नजर जो है सब तरफ। अब बगल में एक बहुत अच्छा भगत, अनुसूचित जात, जो जूता उता सिलने का, वो बैठा है, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम कर रहा है, और कथा में भी ध्यान है, नाम भी ले रहा है, काम भी कर रहा है। अब कथा वाच जो है बोलने वाला भागवत कह रहा है, लेकिन मन कहीं है, नजर कहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसमें भी ध्यान है। ऐसे समय में नारद जी आते हैं, ऐसे समय में नारद जी आके तो नारद जी को ब्राह्मण देखो, देवर्षि नारद आ गए, लेकिन आइए ये महाराज, देवर्षि नारद प्रणाम, आई आई बैठे, ये नहीं बोल रहे हैं। नारद जी आ गए, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार, फिर भी बैठो नहीं बोल रहे, कैसे आना हुआ? तो बोल, नारद जी बोलते हाँ मैं बैकुंठ जा रहा हूँ भगवान के पास, तो आप कथा आपको मैं देखा, सुन में आकाश में विचरण कर रहा था, तो आपका कथा सुनाई दिया, तो मैं बोला थोड़ा भगवत कथा भगवान के, जहाँ मैं जा रहा हूँ उनका गुणगान यहीं हो रहा है, यहीं से थोड़ा सुन के जाऊँ, तो मैं आ गया। अच्छा ठीक, तो आप बैकुंठ लोग जा रहे हो, तो एक काम जरा मेरा कर देना भाई। ब्राह्मण बोलता है, आप कथा बोलने के बताइए, जैसे आदेश। नारद जी हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता, अब भगवान को जरा पूछना, इस शरीर के अंत के बाद मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा या मैं भगवत धाम में भगवान के पास रहूं, इसको जरा पूछ के आना। ठीक है, जरूर पूछूंगा। नारायण करके जब आगे बढ़े, जो भक्तराज जूता सी रहा है, भजन कर रहा है, अच्छे पवित्र भक्त उसके तरफ, तो सुनिए सुनिए एक और काम देखना, आप जब वापस आ गए, ये देखना भगवान क्या कर रहे हैं वो जरा बताना मुझे। बोला ठीक है, वही बताऊंगा। तो जैसे मुची के पास पहुंच जाते हैं नारद जी, मुची जो है तुरंत काम को बगल में कर दिया, थोड़ा पानी से हाथ धोया, नारद ऋषि के चरण को पकड़ करके, मस्तक का चरण को लगा करके प्रणाम किया, ओहो मेरा आज अहो भाग्य है ऋषिवर, मेरा अहो भाग्य है, ये चरण जो है भगवत धाम जा रहा है, अब उस चरण का मुझे स्पर्श हुआ, मैं बड़े भाग्यवान हूँ आज, मैं तो कैसे जा सकता हूँ प्रभु, मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरा नतमस्तक दंडवत प्रणाम जो है भगवान को जरा बता देना अर्पित, मैं उनके चरण में दंडवत प्रणाम, प्रणाम तो किया है ऋषिवर को, आइए बोल रहा है ऐसा, तो बोला जरूर जरूर बताऊंगा भक्तराज, जरूर बताऊंगा, नारायण नारायण करके चले गए। वैकुंठ लोग जैसे पहुंचते हैं, तो आजकल हम किसी से मिलने जाते हैं जी, घंटी बजाना पड़ता है या लेटर देना पड़ता है या कार्ड देना पड़ता है अपना परिचय, तब जाते हैं, लेकिन नारद जी को ऐसा नहीं है, कहीं भी जाते हैं उनका तो पहला से घंटी बजते ही रहता है, नारायण नारायण बराबर है ना। तो जब वैकुंठ लोग पहुंचे, तो लक्ष्मी सुन लिए नारद जी आ रहे हैं, प्रभु भगवान की सेवा कर रही थी, चरण सेवा को छोड़ करके आ रहे हैं, देवर्षि नारद आ रहे हैं, देखो सत्कार, उनके लिए व्यास आसन का व्यवस्था, नारायण उतने में पहुंच ही आते हैं, तो नारायण धन्यवाद कर करके नारद ऋषि माता को भगवान को, हाँ कैसे आना हुआ भक्तराज देवर्षि नारद, हाँ मैं से आ रहा था, चलो बहुत दिन से नहीं आया हूँ, मिल लूँ आपसे, आशीर्वाद ले लूँ आया। अच्छा ठीक, सब कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है। एक बात है भगवान, एक बहुत अच्छा भगत है, ब्राह्मण है, चार वर्ण में जो आप बनाए हैं उसमें ब्राह्मण है, कथावाच कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ संदेश दिया है, पूछा है, कुछ किया ना करके मुझे आपके पास, क्या क्या बोला है? वो बोला है कि शरीर के अंत के बाद मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा या आपके पास रहेंगे, वो इसके बारे में जो पूछा है आपके पास, ब्राह्मण बच्चा बड़ा अच्छा कथावाचक है, कथा कह रहा था, तो ऐसा पूछ मतलब पूछ के आना बोला है, तो प्रभु उसको जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना ठीक है, और एक भक्त है प्रभु, बहुत अकिंचन भक्त है, बहुत गरीब है, अनुसूचित जाति है, लेकिन आपका नाम हमेशा लेता रहता है, अनन्य भक्त है, वो आपके चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है प्रभु, तथास्तु, भगवान वहीं से, और भगवान बिना पूछे उसको क्या बोलते हैं नारद जी को, देवर्षि ये भक्त का पुनर्जन्म नहीं है, इस शरीर के अंत के बाद मेरे पास रहेगा, मेरे धाम मेरे पास रहेगा, प्रभु मैं चलता हूं, ऐसा बोले नारायण करके चलने लगे 5-10 कदम, फिर याद आया कि क्या भगवान कर रहे हैं देख के आना, अब भगवान सबका हृदय का बात जानते हैं जी, वैकुंठ में रहते हुए भी अन्नांत चरस्तम परमाणु अणु से लेकर के परमाणु तक भगवान हमेशा हैं। वैकुंठ लोक में रहते हुए भी ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप हर जगह व्याप्त हो, कण कण में हो। भगवान मूर्ति के रूप में हैं, हमारे हृदय में, तुलसी माता में हैं, बेल वृक्ष में हैं, पारिजात में हैं, ये बौल में हैं, बगुल हैं, सब में भगवान हैं, सब के हृदय बैठे हैं भगवान। तो जैसे नारद जी का विचार हुआ, अरे पंडित तो बोला भगवान क्या करते हैं देख के आना, तो जैसे इधर पीछे सिर घुमाए नारद जी भगवान के तरफ, तो भगवान क्या कर रहे हैं जैसे हमारे माताएं माला बना रहे हैं उधर सुई, मैं तो अभी धागा नहीं डाल सकता जी, उम्र हो गया है, चश्मा में भी तकलीफ होता है, है? तो उस सुई के होल धागा जो हम घुसाते हैं बड़े मुश्किल से, उस धागा उस सुई की होल में बहुत बड़ा हाथी को लेके इधर से इधर प्ले कर रहे भगवान, उस सुई के ऐसे होल में हाथी को लेके इधर से उधर प्ले कर रहे हैं, लीला भगवान का देख। ये नारद ऋषि देखे, धन्य है प्रभु, धन्य है, फिर वहां करके नारायण नारायण करके वापस आ जाते हैं। कथा तो चल ही रहा है जिधर आ जाते हैं ब्राह्मण देवता, देखो भगवान के धाम से भी आ रहे हैं लेकिन ब्राह्मण देवता आइए आइए बैठिए आप प्रणाम नहीं कर रहे, लेकिन आपने भारतीय संस्कृति कहता है जो तीर्थ स्थान जाते हैं ना, अभी भी गांव में रिवाज है जी, शहर का भले ही नहीं हो अभी भी गांव में है, कोई जगन्नाथपुरी जाता है या चारों धाम गया है, कोई एक भी धाम में गया है अब वापस आता है तो घर में बुजुर्ग लोग बोलते हैं घर में बेटा वापस ऐसा नहीं घुस जाना घर में, आज कम से कम 2 घंटा पहले या 1-2 मील दूर में से मैसेज दे देना समाचार फिर आना। क्यों? जब तीर्थ स्थान से कोई आता है तो उसको स्वागत के लिए जाते हैं जी, जैसा कभी शादी पार्टी इधर बहुत शादी होता है, हैं तो बारात आते हैं तो दुल्हन पार्टी पहले से रहते हैं तो उनको स्वागत के लिए लेने जाते हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार कोई तीर्थ स्थान से आता है, ये वैदिक संस्कृति है भारत का, उसको लेने जाते हैं नया कपड़ा, धोती चंदन फूलमाला, और वो भी कुछ प्रसाद लेके आता है सबको देने के लिए, ये प्रथा है गांव में अभी भी। लेकिन नारद ऋषि आए, ब्राह्मण कथावाच कर रहा है जी, लेकिन भगवान के धाम से वापस आ रहा है, यहां तक प्रणाम भी दोबारा भी प्रणाम देवर्षि नारद नहीं बोल रहा है, बैठिए नहीं बोल रहा है, उल्टा नारद ऋषि देखो भक्त है, नमस्कार पंडित जी नमस्कार, हाँ आई आई आगे बैकुंठ, हाँ आगे, तो मेरा काम किए कि नहीं, हाँ उसी के तो बताने आया हूं ब्राह्मण देवता, हाथ जोड़े हुए हैं नारद जी, उसी को बताने आया हूं, क्या क्या बोले भगवान, बोलते हैं और जन्म लेना पड़ेगा आपको, है मुझे जन्म लेना पड़ेगा, मैं इतना भागवत कर रहा हूँ, ये हूँ ब्राह्मण कुल का हूँ, ये भाई भगवान तो ऐसे बोले, अच्छा चलो ठीक, तो ये बताओ आपने क्या देखा, मैं दूसरा भी पूछा था ना भगवान क्या कर रहे हैं या बताना, हाँ वो भी थे, तो क्या कर रहे थे, तो भगवान तो एक सुई की होल में बहुत बड़ा हाथी को लेकर इधर से इधर से घुसा रहे थे, इधर से फिर इधर निकाल रहे थे, अरे अरे भैया ऐसे बदमाशी बात मत करो, झूठा बात, आप देवर्षि नारद कहलाते हो, डांट रहा है, क्या है तुम देवर्षि ने नाम खराब कर रहे हो, सुई के होल में क्या हाथी को घुसा जाएगा, फिर जो शुद्ध भक्त को रहा नहीं जाता है मेरे प्रभु लोग, इधर बगल में मुची बैठा है आके ब्राह्मण के चरण में गिर गया, मेरे प्रभु के चरण में अपराध कर रहे हो, नारद ऋषि के चरण में अपराध कर रहे हो, मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, क्षमा करो ब्राह्मण देवता, बोलो मत, बंद करो अपराध कर रहे हो, अभी भी मान जाओ, जिससे कृष्ण ने शिशुपाल को बोले तुम्हारे माँ ने 100 दोष क्षमा मांगा था लेकिन केवल 10 बाकी है, बंद करो, और ज्यादा बोलने लगा, उसी प्रकार ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ने शिशुपाल का छोटा भाई बराबर तो ये सब वृत्तियां हैं जी संसार में, कलयुग में, अब ये भी इतना सरल भगवान हमें दे दिए हैं महाप्रभु, महावदन्याय कृष्ण प्रेम को बांटे हैं जी महाप्रभु, भारत में छोड़ दिए सब तरफ नहीं गए, कितना देखो भक्त दयालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्त को छोड़ दिए प्रभुपाद के ऊपर, तुमको करना है क्रेडिट, जैसा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को क्रेडिट दिए जी हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्रेडिट प्रभुपाद को दिए। चलो प्रभुपाद की, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, है बराबर है ना। संसार के कोने कोने में, संसार के कोने कोने में, मैं कल आज तो आज रात नहीं, कल रात को मैं अमेरिका से वापस आया है, तो मुझे बुलाया गया था सरकार वहां ज्यूरी ड्यूटी में है। दो केस, कार एक्सीडेंट का, एक एम्बुलेंस का बच्चा। अच्छा उदाहरण मैं क्या बोला उनको, जज हमारे साथ कितने खुश हुआ बतादार। अमेरिका में एक लॉ है, अमेरिका वहाँ का जज होता है, 5 वकील होते हैं, कम से कम 50 आदमी होते हैं जनता जो वहाँ के ना, 18 साल से 75 साल की उम्र, 6 साल में एक बार ज्यूरी ड्यूटी जाना पड़ता। तो उसमें गया तो कार एक्सीडेंट के बारे में सब, सुबह 8 बजे से बैठे थे शाम को 5 बजे तक, खाली लंच के समय 1 घंटा छुट्टी, डिस्कशन ये वो 3 दिन तक। तो मेरा नंबर आया दूसरा दिन में, एम्बुलेंस जो बीमारी आदमी को उठा के ले जाता है ना जी, इमरजेंसी में फोन करते हैं, बुलाते हैं तो जल्दी एम्बुलेंस है हॉस्पिटल ले जाते, तो जल्दी जल्दी जाते में वो एम्बुलेंस एक कुछ लोग को ठोक करके मर्डर हो गया, माने मर गए एक्सीडेंट। तो वकील लोग उसका यही दृश्य, ये थोड़ा भौतिक है लेकिन देखो आसक्ति पैसा के बारे में, तो कितना इसको पैसा मिलना चाहिए एम्बुलेंस में, जो एक्सीडेंट हुआ मर गया पार्टी को कितना मिलना चाहिए एम्बुलेंस कितना भाई। तो मेरे पास जब आया बोला यस, मैं बोला एवरीबडी टॉकिंग मेनी आवर्स यू नो एम्बुलेंस एम्बुलेंस एक्सीडेंट एम्बुलेंस नो व्हाई नो कमिंग नेम ड्राइवर नेम एम्बुलेंस कार हु ड्राइविंग व्हाट इज ड्राइवर लाइसेंस राइट साइड लेफ्ट रॉन्ग साइड राइट साइड ड्राइविंग ड्राइवर हु व्हाट इज एम्बुलेंस नंबर नो हैव वेरी रिकॉर्ड व्हाट कैन आई डिस्कस दिस थिंग। तो जज बोलता है यस स्वामी जी करेक्ट ए गुड पॉइंट, बोलता है ये गुड पॉइंट, बोला बहुत अच्छा है बात बोले। हमें बोला खाली एम्बुलेंस से कोई चलाता होगा नहीं, ड्राइवर को पकड़ो खाली एम्बुलेंस का नाम क्या, बराबर है ना। तो उसी प्रकार हम मनुष्य जन्म लिए हैं, सब चीज को मनुष्य जान सोच समझ सकता है, है अच्छा बुरा सबको निर्णय ले सकता है। अब अच्छे जगह में रह करके भी बुरा बात सोचें, बुराइयां दूसरे का सुने, तो हमारा अच्छे में रह करके फायदा किया हुआ, भक्ति मार्ग में जुड़े हैं फिर भी सब ये आसक्तियां जो भगवान से संबंध नहीं है उसको त्यागना बहुत जरूरी है, बराबर है। तो ये शिक्षा जो है इस अध्याय से हमें मिलता है, इस अध्याय में जो है हमें सब सुधार करने का, हमारे हर आदमी दोष से है भाई, हर आदमी दोष जो है कलो शुद्र संभव पूर्ण दोष में पूर्ण भरा हुआ है सब व्यक्ति, तो उसको निपटारा हम भक्ति के द्वारा कर सकते हैं। तो इसीलिए हर भक्तों को जो है हर दिन मंगल आरती, जो खास करके यहाँ आश्रम में रहते हैं, मंगल आरती जप प्रभुपाद के सामने, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, क्लास है, क्लास के बाद प्रसाद, फिर जो अपने को सेवा मिला है बड़े प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ उस सेवा को हम करें। इसी प्रकार भगवान को हम प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान ऐसी हमारी को सेवा में लगाए रखिए, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो, भगवान अपने पास हमें बुला लेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद ने बताया यहाँ पर लेक्चर में, आप लोग संध्या आरती में जितने उछल उछल के नाचोगे, मेरे पास भगवान के धाम में पहुंचने का प्रयास करोगे, नहीं भी आ पाओगे तो उछल उछल के भगवान के सामने नाचोगे तो मैं आपका हाथ पकड़ के खींच लूंगा। मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये व्यास आसन है, सच बात बता रहा हूँ प्रभुपाद। ये कहां पर बोले, वृंदावन, वृंदावन में 1976 की बात, वृंदावन धाम में श्रील प्रभुपाद। तो हम सब प्रभुपाद के अनुयायी हैं जी, बहुत सिंपल साधा सरल है बता दिया, 16 माला जप करो, अच्छा प्रेम गदगद से, ड्यूटी बजाने के लिए जल्दी खत्म करने का नहीं, बराबर छः से सात मिनट होना चाहिए एक माला, फिर गलती का सवाल ही नहीं होता है। चार पाँच मिनट में डर है गलती का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसमें गलती नहीं है। और एक श्वास में अगर 16-32 शब्द को बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, तो मिस्टेक जरूर होगा दो बार तीन बार। तो इसीलिए बड़ी गदगद नयनम गलद अश्रुधारयादनम गदगद रुद्रयाग, महाप्रभु का शिक्षाश्रम में हमें याद रखना चाहिए, हे भगवान हम आपके नाम लेने में हमारा अश्रुपात कब होगा, हमारे शरीर में हे गोविंद रोमांच कब आएंगी, ये भाव आना चाहिए। तो कैसा होता है, केवल जप से आता है, स्पष्ट अपने कान में सुनने के लायक हम जप करें ब्रह्म मुहूर्त में। 32 माला की आवश्यकता नहीं, 25 की आवश्यकता नहीं, 16 की करो, 64 से प्रभुपाद ने 16 में रख दिया, नहीं तो खाली 64 माला भजन भोजन पहले है, कितने दयालु पर दुखे दुख शिल प्रभुपाद गुरु महाराज, उनका बर्तन है खुद सेवा, किताब ट्रांसलेशन करना, बुक भागवत कृष्ण बुक चेतन चेतामित भागवत गीता सब, और सब मैनेजमेंट करना, रसोई करना पका खिलाना, और साथ में जूठा भी धोना, किचन तो धोएंगे जूठा भी, ऐसे भी मौका है, बड़े प्रेम के साथ गुरु महाराज से सीख सकते हैं। वीडियो तो देखते होंगे ना आप लोग हैं प्रभुपाद को, सब तो सब आने ये मन को अच्छा स्वच्छ रूप से हम नहीं लगाए निपटारा फल्गु वैराग्य के बराबर। उदाहरण हमारे गुरुजी देते थे श्रील प्रभुपाद, फल्गु वैराग्य बिहार में गया में आता है, फल्गु नदी है पानी, बरसात में भी बरसना छूट जाने के बाद नहीं बहता है अंदर, खैर ये स्टोरी अलग है, लंबा जाएगा, मैं अभी दिखावा नहीं होना चाहिए। हाँ ये तो दिखावा होने से क्या होता है, माया जब बोलता है कृष्ण भूलिया जी भोगवांछा करे माया ताके झपोटिया धरे, माया जो है हमेशा पीछे से पकड़ता है, आगे से सामने से कभी नहीं, जैसे शेर हिरण को सामने से नहीं पकड़ता, बिल्ली चूहा को सामने से कभी नहीं पकड़ता, चूहा ऐसा सामने है कभी नहीं पकड़ेगा, क्रास हो जाएगा चुपचाप हो आँख मूंद के बैठी है, चूहा चले जाएगा बाद में कुछ खाने पीने में भूल जाएगा, पीछे से झपटी। तो उसी प्रकार माया है माया पीछे से कवर करती है, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी, हम क्या कर रहे हैं क्या करने जा रहे हैं, हम लाल कपड़ा पहने हैं क्या करने जा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इस सब का साखी भगवान है, सूर्य देव है, चंद्रमा है, आकाश है, हम चोर जैसा बोलता है ना चाणक्य पंडित का, ये है एक उदाहरण गुरुजी देते थे भी, अकर्मी भूमि निंदंती जल निंदंती रोगिणा बिटप स्त्री पति निंदंती चोर निंदंती चंद्रमा, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन को चोर निंदा करेगा जी, काला रात उसको अच्छा है, बराबर है, जो पतिव्रता स्त्री नहीं अपने पति की निंदा करेगा दूसरे से जिसका संबंध प्यार है, आज जो कर्म अच्छा नहीं किया खेती में, जैसा दो हिस्सा एक जमीन को दो टुकड़ा कर दिए, एक भाई बराबर देख रेख नहीं कर रहा है तो दूसरे भाई का फसल अच्छा हुआ अच्छा दिखता है तो उसको बोलेगा अरे मेरा टुकड़ा जमीन अच्छा नहीं, हम अच्छा खाद नहीं डाले, अच्छा दवाई नहीं डाले, अच्छा पानी नहीं डाला, फसल कैसा अच्छा होगा जी, अकर्मी भूमि निंदंती, तो हमारा कर्म अकर्म है, अकर्मी भूमि निंदंती जल निंदंती रोगिणा, बीमारी आदमी जैसा ठंडा पानी में नहाने जाओगे अच्छा साफ फ्रेश रहेगा, लेकिन बीमारी आदमी को बोलो तो छूते ही अगर ठंडा पानी नल के पास जाएगा तो बाल रोमांच खड़े हो जाएंगे, क्यों पानी बराबर नहीं, पानी बराबर है हमारा शरीर बराबर नहीं है, बीमार है टेम्परेचर है, जल निंदंती रोगिणा बेटा पे स्त्री पति निंदी चोर निंदी चंद्रमा, ये है तो निंदा, ये चाणक्य सब संत महात्मा लोग इसको यूज कर प्रभुपाद यूज, तो इसी प्रकार है प्रभु जी आप तो हम बहुत सारे इधर उधर से भी बातें हैं शास्त्रों से महाराज भक्तों से संतों का मुख से जो सुना है से बताए, क्योंकि प्रभुपाद संक्षिप्त में इसके बारे में बताए हैं, कल का श्लोक में लंबा तात्पर्य है, हम बढ़ा चढ़ा के हम नहीं बोलते, गुरु महाराज से ये सीखिया है जो है इतना अपने स्मरण है बोल सकते हैं, हमें तो दास भाव में पूरा जीवन सेवा करते करते आया, अभी भी कर रहा हूँ। हम बहुत बड़ा अध्ययन करते व्यक्ति नहीं, हनुमान जी के बराबर सेवा भाव में अपना जीवन बिता रहे। भीमा प्रभु की कृपा से कल बजरी प्रभु के साथ बैठे थे ऑफिस में, भीमा प्रभु बोले कि कल क्लास आप देना मेरा था, मैं नहीं, मैं बुखार घर जा रहा हूँ। बोला ठीक, जैसे आपका। तो यथाशक्ति हमारे से कुछ भूल चूक हो, मिस्टेक, खैर ऐसा तो मुझे विश्वास है मैं भूल चूक ऐसा मिस्टेक नहीं किया हूँ, अगर भूल चूक हो भी तो आप लोग मन से निकाल दीजिएगा। और मेरा बंद करने के पहले आप सबसे विनती है, बहुत सुंदर लग रहा है जी, निमिष्यारण्य की सभा के बराबर। निमिष्यारण्य में सुत गोस्वामी से 64,000 ऋषि सुने थे, तो इसी प्रकार है राधा रास बिहारी के प्रांगण में। पहला हम प्रभुपाद थे तो इतना लोग नहीं, वो छोटा मंदिर, छोटा सा जगह था, तो बाहर कुछ खड़े भी होते थे लेकिन इतना लोग नहीं रहते थे, यानी छोटा मंदिर 1975 में आपके पिताजी तो आते थे, आप भी आते, उनके पिताजी प्रभुपाद के साथ मॉर्निंग वॉक हर दिन, और पटेल है ना, हाँ ये दोनों हमेशा आया करते थे। तो प्रभु जी को मैं देख रहा हूँ, कोई संडे छोड़ते नहीं, ये भक्ति है जी। देखो भक्ति लता बीज, तो भक्ति लता बीज जो है धीरे धीरे करके ग्रोइंग होता है, हठात नहीं आज सुबह से शाम हरे कृष्ण बोल दिए मतलब शाम को भगवान का दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। गुरुमुख पदम वाक्य चित्ते ना करी, हर दिन हम गाते हैं, और एक दो तीन मिनट का सब मैं ये कि याद आ गया, वृंदावन का गुरु महाराज सुनाए थे, वो बोल रहा हूँ फिर मैं बंद करूँगा। एक बार वृंदावन में प्रभुपाद बताए 1976 में ही, बोला कि बाबा जी भी मेरे बगल में रहता था, हर दिन हम नहाने धोने जाते थे यमुना जी में, तो उसके पास एक बाबा जी ने बताया एक भक्त आया, एक लड़का जवान, बोलता है हरे राम हरे कृष्ण जपते हो तो क्या इसमें क्या फायदा है आप? बोला बहुत फायदा है जी, आनंद आता है। अच्छा आनंद, अब भगवान दर्शन भी देते हैं क्या? बोला हाँ। तो आप देखते हो? बोला हाँ हम देखते हैं। तो मुझे भी होगा? तो होगा। तो कब बताओगे? बोला कल बताएंगे। तो सुबह से लड़का आ गया, नहाया धोया, गुरु का आश्रम साफ किया, गुरु का खिचड़ी बनाया, खिलाया गुरु को, शाम को बोलता है गुरु जी आप दर्शन बोले थे कि भगवान का दर्शन होगा, कल बताता हूँ बेटा कल बताता हूँ। ऐसा करके 6 दिन तक बोलते गए, गुरु जी 6 दिन से मुझे आप बोल रहे हो क्या सही है या खाली ऐसे सुबह से खिचड़ी बनाओ और आश्रम साफ करो इसी में लगाए हो? अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख हमारे जो आंगन में पीपल का झाड़ है ना, इसमें कितने पत्ते हैं उतने बार जन्म लेना पड़ेगा, लाखों पत्ते हैं जी पीपल के झाड़ में, अभी बेल के झाड़ में कितने पत्ते हैं है ना, तो बड़ा पीपल का झाड़ था लाखों। तो इतना खुश हो गया शिष्य, अरे मेरे गुरु महाराज बोल दिए भगवान का दर्शन होगा, उसमें लीन हो गया, इस वचन को लेकर के नाम में महामंत्र में लीन हो गया। तो प्रभुपाद बताते हैं, बाबा जी बताता था, उस शरीर के अंत में यंग लड़का शरीर छोड़ते छोड़ते भगवान का नाम लेते लेते छोड़ते, तो कहाँ गया वो? भगवत धाम गया। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ना करिया क्या, तो जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं नामकरण होता है तो हम लोग सब संकल्प लेते हैं कि मैं 16 माला करूंगा, जो सेवा मिलेगा करूंगा, इसका साखी सब है, भगवान है, पृथ्वी है, आकाश है, धरती है, सूर्य है, सब साखी हैं, तो उसको हम निभाएं तो ये जरूर हम भगवत धाम जा सकते। सेवा में तत्पर रहना चाहिए, पोजीशन में नहीं, सेवा में तत्पर रहें। प्रभुपाद नहीं बोलता, सेवा में तत्पर रहो, पोजीशन के पीछे मत भागो, पोजीशन देते हैं आपे आप, दीक्षा के पीछे मत भागो, गुरु खुद बोलता है तुम दीक्षा लो। प्रभुपाद ये बोलते तुम दीक्षा लो, ऐसे ऐसे बोल। जब मुझे ब्राह्मण दीक्षा 1977 में हुआ मायापुर में, तो हमारे कंस्ट्रक्शन का जो इंचार्ज थे सुरभि गृहस्थ हैं, मंगल आरती के बाद उनकी बेटी 20-22 साल की थी लड़की, वो उनकी पत्नी, वो वृंदावन में जो दुकान उकान लगाते हैं ना, वो गेट के बगल में छोटे छोटे दुकानें हैं, वहाँ रो रही हैं उनकी पत्नी, और वार्तालाप तीनों का हो रहा है, माँ बेटी रो रहे हैं फागुन पूर्णिमा के दिन 1977 में। क्यों रो रहा है, क्यों रहे हैं, जपो नहीं कुछ नहीं, सुबह से रो रहे हैं, मंगल आरती के बाद रो रहे हैं, 8 बजे गुरु पूजा नहीं, श्रृंगार आरती नहीं। लेकिन जब हम लोग का हवन यज्ञ में आप दीक्षा के लिए बैठे, गायत्री दीक्षा के लिए है, तो सुरभि महाराज लोहंगी पहन के आ रहा है। तो प्रभुपाद उनको रात को 9 बजे बोले थे, आई गिव टुमारो संन्यास यू, प्रभुपाद ने। अब गोपाल कृष्ण महाराज को पूछ लेना है, लोकनाथ है ना, क्षमा करना, लोकनाथ महाराज थे उसमें, ये महाराज लोकनाथ महाराज, हम बैलगाड़ी में थे, वहाँ बैलगाड़ी से वहाँ पहुँचे कुंभ मेला। तो आई गिव समान संन्यास टुमारो, तो वो बताई, उन्होंने बताया कि मैं आज संन्यास ले रहा हूँ। तो बिचारी का क्या हाल होगा, है बोला नहीं डोंट वरी इसका। तो गुरु मुख पदों वाके चित्ते ना करिया, तो गुरु जो है बोलते हैं सच। तो मेरे भी को भी गुरु महाराज कभी कभी सेवा करता था, तो बोले आप पुजारी में खाली मत रहो, प्रचार भी करना चाहिए। तो बोला प्रभुपाद आप ही ने तो कहा बोला है कि आप लाइफ टाइम पुजारी ही करना, पुजारी कोई भी कर सकता है, एडवाइजर आप कर सकते हो, आप जहाँ के हो उधर प्रचार नहीं तो करो। तो मैंने भी एक कदम उठाया है, तो रायपुर में इतनी बड़ा मंदिर बन रहा है, इतनी हाल इतनी बड़ा है, इतनी ऊंचाई है, आल्टर केवल एक है, स्ट्रक्चर अभी खाली घूंघट का काम चल रहा है, स्ट्रक्चर होगा सब हो रहा है, जुलाई से मार्बल का काम होगा, गेस्ट हाउस 56 रूम है, 4 स्टोरी बिल्डिंग।